ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। प्रथम चौथा स्कंद सातवां अध्याय दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति। श्लोक संख्या 35। सिद्धाः ऊचुः अयम् त्वत्कथा मृष्ट पीयूष नद्याम् मनः वारणः क्लेश दावाग्नि दग्धः त्रिषा आर्तः अवगाढः न संसार क्षमा कीजिए न सस्मार दावम् न निष्क्रामति ब्रह्म संपन्नवत् नः। सिद्धा ऊचुः अयम् त्वत्कथा मृष्टपेयुषु नद्याम् मनो वारणः क्लेशदावाग्निदग्धः त्रिषार्तोऽवगाधो न सस्मारदावम् न निष्क्रामते ब्रह्म सम्पन्नवन्नः। सिद्धा ऊचुः सिद्धों ने प्रार्थना की, हे भगवान, हमारे मन उस हाथी के समान हैं जो जंगल की आग से पीड़ित होने पर नदी में प्रविष्ट हो जाने से सभी कष्ट भूल चुका है। उसी तरह से ये हमारे मन भी आग की दिव्य लीलाओं की अमृत नदी में निमजती है और ऐसे दिव्य आनंद में जो परब्रह्म में तदाकर होने के सुख के समान ही है निरंतर बने रहना चाहते हैं। तात्पर्य यह कथन सिद्ध लोक के वासियों का है जहां 8 प्रकार की सिद्धियां पाई जाती हैं। वहां के वासी 8 प्रकार की योग सिद्धियों के स्वामी होते हैं, किंतु उनके कथन से ऐसा लगता है कि वे शुद्ध भक्त हैं। वे भगवान की लीलाओं के श्रवण की अमृत सरिता में निरंतर अवगाहन करते हैं। भगवान की लीलाओं का श्रवण कृष्ण कथा कहलाता है। इसी प्रकार प्रह्लाद महाराज का कथन है कि जो लोग भगवान की लीलाओं की कथा के अमृत सागर में डूबे रहते हैं वे मुक्त हैं और उन्हें भौतिक जीवन से कोई भय नहीं रहता। सिद्धों का कहना है कि सामान्य पुरुष का मन चिंताओं से पूर्ण रहता है। यहाँ पर एक ऐसे हाथी का उदाहरण दिया गया है जो जंगल की आग से पीड़ित होकर राहत पाने के लिए नदी में घुस जाता है। यदि इस संसार रूपी दावाग्नि से पीड़ित लोग भगवान की लीलाओं की कथा रूपी अमृत नदी में केवल प्रविष्ट हो जाएं, तो वे इस संसार के सारे कष्ट भूल जाएं। सिद्धों को सकाम कर्मों की यथा यज्ञ कर कि यथा यज्ञ करके अच्छे फल भोगने की तनिक भी परवाह नहीं रहती। वे तो मात्र भगवान की लीलाओं की दिव्य चर्चा में मग्न रहते हैं, इसी से वे परम प्रसन्न रहते हैं। उन्हें शुभ या अशुभ कर्मों के करने की परवाह नहीं रहती। जो लोग सदैव कृष्ण भावना भावित रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार के कर्म या यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण भावना स्वयं में पूर्ण है, क्योंकि इसमें वेद वर्णित सभी विधियां सम्मिलित हैं। अनुवाद को दोहराइएगा। सिद्धों ने प्रार्थना की, हे भगवान, हमारे मन उस हाथी के समान है जो जंगल की आग से पीड़ित होने पर नदी में प्रविष्ट हो जाने से सभी कष्ट भूल चुका है। उसी तरह ये हमारे मन भी आपकी दिव्य लीलाओं की अमृत नदी में निमजती हैं और ऐसे दिव्य आनंद में जो परब्रह्म में तदाकार होने के सुख के समान ही है, निरंतर बने रहना चाहते हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकर चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कई बार हमारे इस्कॉन के भक्त ये सोचते हैं कि भक्त केवल इस्कॉन में होते हैं। हरे कृष्ण। लेकिन सत्य तो ये है कि भगवान के भक्त सब जगह फैले हुए हैं। भले कलयुग में पृथ्वी लोक के ऊपर बहुत कम है, लेकिन फिर भी भक्त तो सब जगह होते हैं। और केवल पृथ्वी लोक की बात नहीं, सारे एक ही ब्रह्मांड है, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। और हर एक ब्रह्मांड में शायद एक पृथ्वी लोक है जहां पर एक इस्कॉन होता होगा। तो ऐसे हजारों करोड़ों शुद्ध भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण के, और ये तो केवल भौतिक जगत में है। भगवान का धाम भौतिक जगत से कहीं ज्यादा बड़ा है। इसका विस्तार इतना है कि उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। सारा भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का केवल एक चौथा हिस्सा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आध्यात्मिक जगत की कोई सीमा है। ये केवल हमें एक समझाने के लिए एक तुलना की गई है। और भगवान का धाम इतना विशाल है और उसमें गोलोक वृंदावन इतना बड़ा है कि सारे वैकुंठ लोक के बराबर है। सारे वैकुंठ लोकों को इकट्ठे करेंगे तो फिर भी वो गोलोक वृंदावन जितना बड़ा नहीं होगा। तो समझिए कि भगवान के भक्तों की संख्या कितनी है, अनगिनत। लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत जाप कर लेते हैं, थोड़ा कुछ प्रवचन दे देते हैं, थोड़ी कुछ हम अर्चा पूजा कर लेते हैं, थोड़ा कुछ अच्छा कीर्तन कर लेते हैं, या थोड़ी कोई ऐसी अच्छी सेवा कर लेती है छोटी मोटी सी, तो हमें थोड़ा गर्व होने लगता है कि हम देखो भक्ति में कितने आगे बढ़ रहे हैं, तो हम कितने अच्छे भक्त हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि वास्तव में हमें और बहुत दूर जाना है। दिल्ली दूरस्थ, अभी बहुत दूर है दिल्ली हमारे लिए, दिल्ली अर्थात गोलोक वृंदावन। तो हम ऐसे शुद्ध भक्तों से प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं इनकी प्रार्थना से, जैसे हम यहां श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंध में पढ़ रहे हैं। अलग अलग ब्रह्मांड के निवासी भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी हृदय की प्रार्थना से हम जान सकते हैं कि हमारी स्थिति क्या है। किसी की प्रार्थना सुनिए और उस प्रार्थना से जान जाएंगे कि उसकी चेतना क्या है। हरेक व्यक्ति प्रार्थना तो करता है, भले वो भगवान से करे, किसी और से करे, कोई मंत्री से करे, तंत्री से करे, कोई यंत्री से करे, किसी कैसे कैसे भी करे, लेकिन हरेक व्यक्ति अपनी अपनी प्रार्थना करता है। और प्रार्थना से हम व्यक्ति को जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रार्थना जो होती है वो हृदय की बात को खोल देती है। प्रार्थना से ये सिद्ध होता है कि उसके हृदय में क्या है। मान लीजिए हार्ट ऑपरेशन कर लिया, हार्ट को खोल, हृदय को खोल दिया है काट कर, तो हृदय के भीतर क्या है हम जान सकते हैं। तो ये प्रार्थना होती है, उनसे हम कोई ऐसी चीज की याचना करते हैं जो हमारे हृदय के लिए बहुत प्रिय है, जिसको हम बहुत चाहते हैं। और जो भक्त हैं वो कृष्ण को चाहते हैं, इसलिए कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति की प्रार्थना करेंगे। जो अभक्त हैं किसी भौतिक चीज के लिए प्रार्थना करेंगे, और जो बीच में हैं हम जैसे, कभी इधर कभी उधर, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा मिश्रण का मामला हो जाता है। तो कभी भक्ति की प्रार्थना करते हैं, तो कभी बहुत इधर उधर की प्रार्थना भी कर लेते हैं। तो इस प्रकार से भगवान को ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे हृदय में भी ऐसी भावना हो कि हम भी ऐसे शुद्ध भक्तों की तरह आपसे प्रार्थना कर सकें। भले इस वक्त हम शुद्ध प्रार्थना आपके प्रति नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम ये प्रार्थना तो कर सकते हैं कि हम ऐसे प्रार्थना कर सकें। शुद्ध प्रार्थना के लिए तो हम प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए बताया जाता है कि भगवान की प्राप्ति या धर्म को अगर जानना है तो शुद्ध भक्तों के हृदय तक पहुंच जाना होगा, उनके हृदय के भीतर जाना होगा, तब जाकर हम उनको समझ सकते हैं। इसलिए बताया जाता है कि महाजनो येन कथा सपन्ता धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायम्। धर्म का तत्व जो है, धर्म का सार जो है, वो शुद्ध भक्तों के हृदय में छुपा हुआ होता है। अगर उस तत्व, उस धर्म के तत्व या सार को आप जानना चाहते हैं, श्रुतयो विभिन्न, बहुत सारे शास्त्र हैं, केवल शास्त्र पढ़ के आप समझ नहीं पाएंगे। तर्को अप्रतिष्ठ, तर्क वितर्क से, वाद विवाद से भी समझ नहीं पाएंगे। नसा वशीर्यस्य मतम न भिन्नम, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं, केवल उनके मतभेद होते हैं, ये मेरा मत है, वो आपका मत है, और हरेक व्यक्ति अपना अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है संसार में। लेकिन ऐसे भिन्न मत के प्रस्तुतिकरण से धर्म या तत्व की जानकारी नहीं हो सकती है, क्योंकि धर्म का सार केवल शुद्ध भक्तों के हृदय में छुपा हुआ होता है। तो वहां तक पहुंचे कैसे? पहले तो उनके पद चिन्हों में चल के, महाजनो येन गतः स पंथा, जैसे महाजन चलते हैं शतोवृत्त है, जैसे महाजन चलते हैं ऐसे महाजनों के पद चिन्हों में हमें चलना है। महाजन कौन है? महाजन, महान जो व्यक्ति होते हैं, महात्मा होते हैं, उनको महाजन कहते हैं। श्रीमद् भागवत में कितने महाजन बताए गए हैं? 12, केवल 12 हैं? महाजन तो बहुत सारे हैं, अनंत कोटि हैं, लेकिन केवल 12 नाम दिए गए हैं। इसका मतलब नहीं कि महाजनों की संख्या 12 से सीमित है, लेकिन फिर भी यमराज बताते हैं कि ये 12 हैं। कौन है ये 12? याद कर सकते हैं, एक एक बोलते रहिएगा। भीष्म पितामह, नारद मुनि, शिवजी, व्यास, कपिला, बलि महाराज, फिर यमदेव जो खुद श्लोक बोल रहे हैं, और भागवत किसने बोली? सुखदेव गोस्वामी, और प्रहलाद, प्रहलाद को भूल गए, और जनक, तो ऐसे महाजनों का वर्णन आता है, कहते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। और इसलिए ऐसे भक्त, शुद्ध भक्त जब प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थना से हम समझ सकते हैं कि हमारी क्या भावना होनी चाहिए। इसलिए वैष्णव आचार्य ठाकुर जो होते हैं उनकी प्रार्थना भजन जब हम गाते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो जो विचार वो व्यक्त करते हैं अपनी प्रार्थनाओं से, वो विचार हमारे लिए अनुसरणीय है। हमें उनको हमारे जीवन में आचरण करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर भी सिद्ध और सिद्ध हैं, जो सिद्ध लोक में रहते हैं, वो भी ऐसी प्रार्थना करते हैं। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि इनकी प्रार्थना से ये सिद्ध होता है कि ये सिद्ध हैं, भक्ति में भी सिद्ध हैं। इनको सिद्ध क्यों कहा गया है? क्योंकि उनकी अष्ट सिद्धियां होती हैं। कौन सी अष्ट सिद्धियां? योग की अष्ट सिद्धियां। योगाभ्यास, अष्टांग योग का अभ्यास करने से कई सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है। 32 सिद्धियां बतलाई जाती हैं, उनमें से 8 प्रमुख माने जाते हैं। जैसे कोई उदाहरण दे सकते हैं कि अष्ट सिद्धियां किस प्रकार की होती हैं? छोटे से छोटा हो जाना अणिमा, फिर बड़े से बड़ा हो जाना महिमा, फिर भारी से भारी हो जाना, और फिर हवा से भी हल्का हो जाना, और दूसरे के मन में जो हो रहा है उसको समझ लेना। ये सब सिद्धियां प्राप्त करना चाहेंगे ना हम? चाहते हैं ना, दूसरे के मन में क्या चल रहा है, हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, अच्छा है या सिद्धि नहीं है, नहीं तो सब हमारा सारा समाज नष्ट हो जाता है। और प्राप्ति कहीं भी किसी भी चीज को आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे कि आप यहां बैठे हैं कोई योगी, और काबुल में अनार जो है, अनार जाना ना फल, अनार बहुत अच्छे मिलते हैं, सेब भी अच्छे मिलते हैं काबुल में, अफगानिस्तान में। तो यहाँ बैठकर हरिद्वार में किधर या प्रयाग में बैठकर वो हाथ उठाकर काबुल से एक अनार पेड़ से खींच के ले आ सकता है, यहाँ खा सकता है। इसको प्राप्ति सिद्धि कहते हैं। तो इस प्रकार से कई आश्चर्यजनक सिद्धियां हैं जिससे साधारण लोग बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाएंगे, इसमें जनक ऐसे सिद्धियां हैं। तो ऐसे सिद्धियों का के प्रदर्शन से जन साधारण बहुत प्रभावित हो जाते हैं, सोचते हैं कि अरे वाह, ये वो कितने शक्तिशाली पावरफुल ये साधु हैं, ऋषि मुनि हैं। फिर उनकी उनके शरण में जाते हैं, उनके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए याचना करते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त जो होते हैं भगवान के, ऐसे सिद्धियों से प्रभावित नहीं होते हैं। सोचते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर सिद्धि से हवा में ऊपर जाना चाहते हैं, हम थोड़े पैसे देकर हवाई जहाज में जाते ऊपर हो जाते हैं। अगर हमें कुछ चाहिए तो बस टेलीफोन कर दिया, आजकल तो काबुल का भी माल यहाँ मिल सकता है, थोड़े पैसे देंगे सब मिल जाएगा। तो जीवन भर तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं और फिर भी कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकते हैं, तो क्या लाभ है? इसलिए जो ज्यादातर अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं और इनको ऐसे सिद्धियों की प्राप्ति होती है, वो अक्सर भगवान को भूल जाते हैं, क्योंकि ऐसे सिद्धियों से उनको ऐसे दूसरों के ऊपर प्रभाव की शक्ति मिल जाती है, ऐसे भोग के साधन उनके हाथ में आ जाते हैं, ऐसा ऐश्वर्य उन तक पहुंच सकता है कि भगवान को स्मरण, भगवान का स्मरण ऐसी अवस्था में करना बहुत कठिन है। इसलिए ज्यादातर जो योगी होते हैं वो सकाम होते हैं, सकाम कर्मी होते हैं, कोई उनको कोई भौतिक चीज की लालसा होती है, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो योगी हो, चाहे वो भोगी हो, सब वास्तव में संसार में सकाम व्यक्ति के होते हैं। केवल कृष्ण भक्त अकेला ही ऐसा होता है जिसके हृदय में कोई भौतिक कामना नहीं होती है। इसलिए बताया जाता है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो भुक्ति है जो संसार का भोग करना चाहता है, मुक्ति जो ज्ञानी है जो संसार से के जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाना चाहता है, या सिद्धि अर्थात जो अष्टांग योग की सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है, ये सारे लोग जो हैं अशांत होते हैं, क्यों? क्योंकि इनके कामे होते हैं, इनके हृदय में एक कामनाएं रहती हैं। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम, अतएव शांत। निष्काम है वो, इसलिए वो शांत रह जाता है। तो इसे हमें समझना चाहिए कि कृष्ण भक्ति ही परम शांति का मार्ग है। इसलिए भगवान बताते हैं भगवत गीता के पांचवें अध्याय में कौन सा श्लोक है, वो पीस फॉर्मूला, शांति का फॉर्मूला। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रिच्छति। भगवान बताते हैं कि जब किसी को ये ज्ञान हो जाएगा कि मैं भोक्ता हूं, परम भोक्ता हूं, और यज्ञ और तपस्या मेरे लिए करने चाहिए, मेरे प्रसन्नता के लिए करने चाहिए। जब कोई ये जान लेगा सर्वलोक महेश्वरम कि मैं सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी हूं, और जब ये कोई जान लेगा कि सारे प्राणियों का शुभ चिंतक हितैषी मैं हूं, तब वो परम शांति की प्राप्ति करेगा। तो इसीलिए कृष्ण को जानना केवल बुद्धि से जान नहीं सकते, हमें हृदय से जानना है कृष्ण को, अर्थात भक्ति से। जब कृष्ण कहते हैं कि जो ये तीन चीजें जानता है, जानने का मतलब जो भक्त है तो ऐसी तीन चीजें जान सकता है, अर्थात केवल भगवान श्री कृष्ण का भक्त ही शांत हो सकता है और कोई भी शांत नहीं हो सकता। इसलिए यहां पर आश्चर्य की बात है कि सिद्ध लोक के निवासी इतने सारे अष्ट सिद्धि होने के बाद में भी उनके हृदय में भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति की भावना है। और शुद्ध भक्ति की भावना है तो क्या कह रहे हैं कि हमें सिद्धियों से कुछ लेना देना नहीं है। सिद्ध लोक के निवासी, उनको इंडियन एयरलाइंस और वायुदूत की आवश्यकता नहीं है, वो जहां चाहे ब्रह्मांड में उड़ के जा सकते हैं, सारे ब्रह्मांड में। ये इनकी सिद्धि है, जन्म से ही उनको ये सिद्धि मिल जाती है कि जहां चाहे वो उड़ सकते हैं। तो ऐसे सिद्धियों के बावजूद वो केवल कृष्ण की कथा का श्रवण करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि आपके कथामृत का पान हम करते रहना चाहते हैं, और आपकी कथा के जो कथा रूपी दिव्य जो नदी है, ऐसे नदी में हम बह जाना चाहते हैं। देखिए, ये जो प्रार्थना है, ये सारे शुद्ध भक्तों की प्रार्थना एक समान होती है। जिस प्रकार से सारे संसार के भोगी जो लोग हैं उनकी भी प्रार्थना एक समान होती है, वो भी ऐसे ही प्रार्थना करना चाहते हैं, धनम देही रूपम देही, ऐसे तो बंगला देही, गाड़ी देही, टीवी देही, है ना, देही देही, तो एक समान उनकी प्रार्थनाएं होती हैं। उसी प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्त जो होते हैं उनकी भी प्रार्थना एक समान होती है। क्या? कथा देही, कृष्ण कथा देही, हमको केवल कृष्ण कथा चाहिए, कृष्ण कथा के रसामृत का पान हम करना चाहते हैं केवल। इसलिए बताया जाता है कि श्रीमद् भागवत उन लोगों के लिए, शुद्ध भक्तों के लिए है। अहुर मुहुर रसिका भूमि भाव का निगम कल्प तरोद गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संवितम। ये भागवत जो है ये सारे वेदों का सार है। ये वेद जो है वो एक कल्प वृक्ष के समान है, और ये वृक्ष का जो सबसे पका हुआ मीठा फल है वो श्रीमद् भागवत है, क्योंकि इसमें कृष्ण के बारे में कथाएं हैं, और ये कथाएं और भी रसीले और भी मधुर हो गए हैं, स्वादिष्ट हो गए हैं। क्यों? सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव गोस्वामी जैसे एक दिव्य तोते ने जब अपना क्या कहते हैं उसको, बीक, चोंच, उसमें चोंच लगा दी है, उसने उसका स्वाद ले लिया है, इसलिए और भी स्वादिष्ट हो गया है, और इसलिए इसके बाद में इस अमृत का पान करने के लिए बहुत आसान हो गया है। जैसे कोई चीज चबाने के लिए कठिन हो और कोई आपको उसको अच्छी तरह से तोड़ के दे दे, फिर आप उसको चबा सकते हैं। उसी प्रकार से कृष्ण कथा समझना, भागवत कथा समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब सुखदेव महाराज जैसे महान वैष्णव उसको समझकर उसका पठन करके फिर उसको समझाते हैं तो फिर बहुत रसीला हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है समझने के लिए। और जैसे जैसे वैष्णव परंपरा में यह भागवत की कथा चलती रहती है और भी ज्यादा स्वादिष्ट होते रहता है, क्योंकि वैष्णव जो है वो अपने दृष्टि से अपने साक्षात्कार के अनुसार उसी कथा को उसी सत्य को प्रस्तुत करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने आजकल के लोगों के लिए, आधुनिक जमाने के लोगों के लिए जो बिल्कुल उचित है ठीक उसी प्रकार से उन्होंने प्रस्तुत किया है, ताकि आजकल के कलियुग के आधुनिक जमाने के बुद्धि वाले लोग, अल्प बुद्धि वाले लोग उसको समझ सके, अश्रद्धालु लोग, ऐसे लोगों के लिए प्रभुपाद जी ने टीका लिखी है और अनुवाद किया है। इसलिए प्रभुपाद जी ने इसको चबाया है, चबाकर उन्होंने अपना प्रसाद दिया है इन टीकाओं के रूप में। ये टीका क्या है? ये तो प्रभुपाद की प्रसाद है हमारे लिए। प्रभुपाद जी बताया करते थे ये टीकाएं जो हैं ये मेरे भक्ति की भावनाएं हैं, भक्ति की मेरे अष्टसात्विक जो उनके विकार होते हैं, हृदय की भावना है ये टीका। तो प्रभुपाद जी ने अच्छी तरह से अपने गुरु महाराज से श्रवण कर लिया, श्रवण करने के बाद उसको समझ लिया, चिंतन मनन किया, अपने हृदय का परिवर्तन हुआ और फिर उसको उन्होंने प्रदान कर दिया। जिस प्रकार से साधारण भोग खाने से उसमें स्वादिष्ट नहीं लगता, जब कृष्ण को भोग दे देते हैं तो प्रसाद हो जाता है, तो तुरंत वही भोजन वही भोग बिल्कुल स्वादिष्ट हो जाता है। आप सबने अनुभव किया है, साधारण भोग खाने से एक स्वाद होता है और वही भोग को कृष्ण को अर्पण करने से अलग स्वाद हो जाता है, बिल्कुल स्वादिष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने उसको चख लिया है। ठीक उसी प्रकार से जब वैष्णव, शुद्ध वैष्णव कोई चीज को चख लेते हैं, भले वो भोजन हो या भले वो कृष्ण कथा हो, उसको चख कर फिर वो रख लेते हैं तो वो अवशेष जो होता है वो बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। इसलिए कृष्ण कथा को और भी ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा हम रसीला और स्वादिष्ट बना सकते हैं। इसलिए भागवत परंपरा है। भागवत परंपरा केवल श्रवण और कीर्तन का होता है। दिन भर रात भर बैठ के कृष्ण का नाम और कृष्ण की कथा सुनते रहो तो हमें उस स्तर के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि कब वो दिन आएगा जब हम भी ऐसी प्रार्थना कर सकेंगे कि हम केवल कृष्ण कथा का पान करते रहें, कृष्ण नाम हम लेते रहें। अभी तो कितनी सारी बाधाएं हैं, 10 मिनट बैठते हैं कथा सुनने के लिए इतनी नींद आ जाती है, 10 मिनट बैठने से शरीर में इतनी तकलीफ होती है, मन में इतनी तकलीफ होती है। लेकिन जब लोग कोई सिनेमा देख रहे होते हैं टीवी पर तब नींद नहीं आती, सुस्ती से बैठ जाए, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान केंद्रित हो जाता है टीवी के ऊपर, क्या सस्पेंस चल रहा है, अभी क्या होगा, अब विलेन कब मारा जाएगा। तो इस प्रकार से रुचि उस चीज में जब होती है तो ध्यान वगैरह सब ठीक ठाक रहता है, निद्रा आहार विहार सब भूल जाते हैं। लेकिन जब कृष्ण कथा आ जाती है तो फिर तुरंत निद्रा आहार सब याद आ जाता है। हमने एक भक्त को दूसरे भक्त को कहते हुए सुना, एक भक्त कह रहा था मुझे रात को नींद नहीं आती, तो दूसरा भक्त कहने लगा जप कर लो नींद आ जाएगी। लेकिन जप करते करते आदत ही पड़ गई कि सो जाना, तो जप करना बैठ जाएंगे तो नींद आ ही जाएगी। वास्तव में जो जाप है वो जागने के लिए है, ताकि हम हमारे निद्रा से, अज्ञान के अंधकार में जो निद्रा है उस निद्रा से हम जाग जाएं। लेकिन हम सोने के लिए हरि नाम को लेते हैं। वास्तव इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए थे, जीव जागो गोरा चंद्र बोले कोटा निद्रा याओ माया तुषा चिरकोले, कि हम माया के गोदी में हम सोए हुए हैं, अज्ञान में, ये नहीं देख रहे हैं कि मृत्यु हमारे करीब आ रही है। तो इसलिए हमें इस निद्रा से उठकर हरि नाम लेना चाहिए और हरि नाम लेकर और भी जागृत करना चाहिए। तो इसलिए कृष्ण कथा का पान करना ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं कि हमें सबको श्रवण कीर्तन इत्यादि ये मार्ग को अपनाना चाहिए। जिस मार्ग को अपनाने से हम भव प्रवाहो परमम पदाम्बुजम, कि हम ये भव प्रवाह को पार करके हम कृष्ण के चरण कमल की प्राप्ति कर सकते हैं। श्रृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहो परम पदाम्बुजम। कुंती महारानी प्रार्थना करती है कि जब हम भगवान के कथाएं का श्रवण करते हैं, श्रृण्वन्ति या गाते हैं, गायन्ति गृणन्ति या स्वीकार करते हैं, या स्मरन्ति जब स्मरण करते हैं, नन्दन्ति जब इन चीजों की कथाओं में आनंद लेते हैं, तव तव इहितम जना तो जो लोग ऐसा करते हैं, तो एव पश्यन्ति अचिरेण ऐसे लोग पश्यन्ति कुछ देखते हैं, अचिरेण मतलब बहुत जल्दी, चिर मतलब बहुत देर से लंबा, अचिरेण मतलब बहुत जल्दी, क्या देखते हैं, तव पदाम्बुजम आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं बहुत ही जल्दी। तो जो लोग आपके श्रवण कीर्तन आपकी कथाओं के श्रवण कीर्तन स्मरण में आनंद लेते हैं और ऐसे रस पान करना चाहते हैं हमेशा, बहुत ही जल्द वो आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं, जिनसे जिस दर्शन से क्या लाभ प्राप्त होता है, भव प्रवाह उपरमम, ये भव रोग का जो की बीमारी है वो नष्ट हो जाती है। ये भौतिक बंधन, ये भव जो है, जन्म मृत्यु चक्कर का जो प्रवाह है जिसमें हम बहते हुए चले आए हैं इतने हजारों करोड़ों जन्मों से, वो प्रवाह बंद हो सकता है। लेकिन कृष्ण कथा का श्रवण कीर्तन करने का पूरा लाभ केवल ये नहीं है कि हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाए। कृष्ण कथा सुनने का सच्चा लाभ क्या है, सबसे ऊंचा लाभ, सबसे ऊंचा लाभ क्या है कृष्ण कथा श्रवण करने का, क्या प्राप्त होता है, प्रेम, कृष्ण प्रेम। ये फल, असली फल जो है वो कृष्ण प्रेम है, कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। जिस कृष्ण प्रेम के सामने मुक्ति भी तुच्छ मानी जाती है, इसलिए भगवान के भक्त मुक्ति के लिए भी कोई अपेक्षा नहीं रखते। मुक्ति हो ना हो, हमें कृष्ण की सेवा चाहिए, चाहे नरक में हो, स्वर्ग में हो, कहीं भी हो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने यही भावना, इसी भावना को व्यक्त किया है अपने प्रार्थना में। कौन सी प्रार्थना में, हम रोज सुबह को कहते हैं हाँ, लेकिन उसमें से कौन सी प्रार्थना, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनिश्वरे भवता भक्तिर अहितुकी त्वयी। मुझे कोई धन की अपेक्षा नहीं है, ऊंचे जाति में कोई ऊंचे परिवार में जन्म लेने की कोई अपेक्षा नहीं है, सुंदर स्त्रियों के संग की अभिलाषा नहीं है, मुझे क्या चाहिए, जन्म जन्मांतर मुझे केवल आपकी अहितु की सेवा और भक्ति चाहिए, बस। जन्म जन्मांतर इसका मतलब मुझे मुक्ति की भी इच्छा नहीं है, नहीं तो फिर जन्म जन्मांतर की बात क्यों कहते, वो केवल ये कहते कि इस जन्म में मुझे आपकी सेवा की अभिलाषा है, फिर जन्म के बाद मृत्यु के बाद मैं आपके धाम में करना चाहता हूँ आपकी सेवा, कहते हैं जन्म जन्मांतर, भले मुझे कितने ही जन्म क्यों न लग जाए लेकिन आपकी सेवा से मैं अलग नहीं होना चाहता। तो ये है शुद्ध भक्ति की भावना, और ऐसे ही भावना, ऐसे ही जो आतुरता है कृष्ण कथा का श्रवण करने के लिए, ये यहाँ सिद्ध इसी विचार को व्यक्त कर रहे हैं। तो हमें भी ऐसे शुद्ध भक्तों से प्रार्थना करनी चाहिए, राधा गोकुलानंद जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि कृष्ण कथा में हमारे भी हृदय में रुचि जागृत हो जाए, और वह हृदय कृष्ण कथा सुनने के लिए रुचि कैसे जागृत हो सकती है, क्या शास्त्रों का क्या वर्णन है, कृष्ण कथा में रुचि जागृत करने का उपाय क्या है, कोई बता सकते हैं, हाँ वैष्णवों की सेवा, कौन सा श्लोक है वो बता सकते हैं, शुश्रूषो सतधान से वासुदेव कथारुचि ज्ञान महत्व विप्र पुण्य तीर्थ निषेवनाथ। ये फॉर्मूला है हमारे लिए संसिद्धि प्राप्त करने का फॉर्मूला। फॉर्मूला समझते हैं ना, सूत्र। ये क्या है, क्या करना चाहिए? शुश्रूषो सद्ध ध्यान से वासुदेव कथा रुचि। वासुदेव की कथा में रुचि कब जागृत हो सकती है? ज्ञान महत सेवया, जब हम भक्तों की, महान भक्तों की हम सेवा करते हैं, जो कि पुण्य तीर्थ निषेवनाथ, जो कि पाप करने की प्रवृत्ति से मुक्त हो चुके हैं। तो ऐसे सेवा से ज्ञान, ऐसे सेवा से उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? वासुदेव कथा रुचि। कृष्ण कथा में अगर रुचि चाहिए हमें, जैसे यहाँ सिद्ध लोग, सिद्ध गण जो विचार को व्यक्त कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें वैष्णवों की सेवा सीखनी चाहिए। वैष्णव की सेवा करना कठिन है, क्योंकि हमारे हृदय में वो निंदा की प्रवृत्ति रहती है, दोष ढूंढने की प्रवृत्ति रहती है। इसलिए अन्य वैष्णवों में उनके अच्छे गुण दिखने के बजाय हमें सबसे पहले उनके दोष ही नजर आते हैं। दोष भला कितना छोटा क्यों न हो, लेकिन नजर उसी पर जाती है, और अच्छे गुण कितने बड़े क्यों न हो, आंखें वहां नहीं जाती हैं। इसलिए वैष्णवों की सेवा करना ये बहुत कठिन बात है, लेकिन जो व्यक्ति वैष्णव सेवा करना सीख लेता है, कृष्ण की कृपा तो अवश्य उसके ऊपर आ जाती है, और फिर कृष्ण कथा सुनने की रुचि उसके हृदय में स्वाभाविक तौर से जागृत हो सकती है। इसलिए हमें एक ऐसा वैष्णव समाज बनाना है जहां सारे वैष्णव एक दूसरे की सेवा करते हों और कृष्ण की सेवा करते हों, जहां हरेक वैष्णव दूसरे वैष्णव को अपने से सामने रखे, अपने से आगे रखे, जहां हरेक वैष्णव नम्र बने और दूसरे वैष्णवों की सेवा करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए तैयार रहे, और अपनी सेवा न चाहे और अपने लिए कोई सम्मान न चाहे। ऐसे समाज हो जहां वैष्णव दूसरे वैष्णवों की निंदा न करें, और दूसरे अगर उसकी निंदा करें तो सुनने के लिए तैयार हो, हृदय से सुनने के लिए तैयार हो। एक ऐसा वैष्णव समाज हमें बनाना है, तब जाकर गोकुल धाम बनेगा, है ना? इसलिए सबसे प्रमुख चीज ये है वैष्णव सेवा। तीन चीजें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, चैतन्य महाप्रभु ने बताए हैं गौड़ी वैष्णव परंपरा तीन चीजों पर आधारित है, तीन सिद्धांतों पर। वो क्या है? नाम रुचि, जीव दया, वैष्णव सेवा। चैतन्य महाप्रभु ने बताई हैं तीन चीजें, सभी को याद रखना चाहिए, हम कल भी पूछेंगे। क्या है वो तीन चीजें? नाम रुचि, जीव दया, वैष्णव सेवा। वैष्णव सेवा करना मतलब हर दृष्टि से वैष्णवों की सेवा करना, लेकिन कृष्ण भावना में सेवा करना। ऐसा नहीं कि हम वैष्णव की सेवा करेंगे, कोई सिनेमा दिखाएंगे उनको, सिनेमा में उनका टिकट स्पॉन्सर कर लेंगे, ये वैष्णव सेवा नहीं है। वैष्णव सेवा मतलब वैष्णवों को कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए सेवा। और फिर नाम रुचि, हरिनाम में रुचि, हरिनाम की नाम कीर्तन, नाम जप में रुचि, अर्थात कथा में भी, कृष्ण कथा में भी रुचि। और जीव दया, ये जीव दया क्या है? जीव दया कैसे कर सकते हैं हम भक्ति में? भक्ति में दूसरों को लगाना, सही बात है, बिल्कुल, इसको जीव दया कहते हैं, अर्थात प्रचार, दूसरों को कृष्ण भावना में आने के लिए प्रेरित करना। लेकिन वो कैसे कर सकते हैं? जब पहले दो हो तब तीसरा हो सकता है। जब नाम रुचि हो और वैष्णव सेवा हो, तब हम दूसरों को दया दिखा सकते हैं, उनको भक्ति में ला सकते हैं। खुद हमारे अंदर नाम रुचि नहीं हो तो हृदय की शुद्धता नहीं होगी, और वैष्णव सेवा नहीं हो, वैष्णव झगड़ते रहे, निंदा करते रहे, तो किसी को लाएंगे भी मंदिर तो वो क्या कहेंगे? अरे ये क्या है, हम यहां नहीं आएंगे, भले बाहर ही रहे। तो वो जीव दया नहीं हो सकती है। इसलिए जब नाम रुचि होगी, वैष्णव सेवा होगी, तब जाके जीव दया हो सकती है। इसलिए तीनों ये हैं, एक ऐसे खंभे हैं जिन पे हमारा सारा गौड़ी वैष्णव संप्रदाय आधारित है, और जिसके ऊपर गोलोक धाम भी आधारित है और छोटे छोटे खंभे बहुत हैं, जैसे गो सेवा, गो रक्षा, तुलसी पूजा, अच्छा विग्रह की सेवा, ऐसे और बहुत चीज, लेकिन सब ये तीन चीजों से संबंधित है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी, शिकायत, सुझाव? आजकल जो सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जादू टोना वगैरह करते हैं, और इनमें से अष्ट सिद्धि में क्या अंतर है? वास्तव में ऐसे कई लोग होते हैं जिन्होंने पूर्व जन्म के योगाभ्यास के फल स्वरूप उनको यहाँ इस जन्म में सिद्धियां मिल जाती हैं। इस जन्म में सिद्धि कोई साधना न किए बिना भी उनको मिल जाते हैं और किए बिना ही उनको मिल जाते हैं। क्यों? पहले कर चुके हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो इस जन्म में तपस्या करके सिद्धि को प्राप्त करते हैं, नहीं वो अलग बात है, वो तो जादू टोना है। ये ऐसी सिद्धि है जैसे योगाभ्यास करके, अष्टांग योग का अभ्यास करके जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, बड़े से बड़ा होना, छोटे से छोटा होना, हल्का होना, भारी होना, किसी चीज की प्राप्ति करना, किसी के मन के ऊपर वश कर लेना, ये सिद्धि है। वो जादू टोना वगैरह जो है वो सब तमोगुण के जो तंत्र तंत्र मंत्र इनसे है, तमोगुण के तंत्र तंत्र सिद्धि से होता है। उसके लिए तो बहुत भीषण भीषण भयंकर जो है ऐसे क्रियाएं करनी पड़ती हैं, जैसे मनुष्य के हड्डी को लेकर कुछ करना, और फिर वो सर को स्कल क्या बोलते हैं उसको, खोपड़ी, अरे खोपड़ी को लेकर उस पर कुछ करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, वो तो तमोगुण की, वो के अध्यात्म से कोई इसका संबंध नहीं है। हालांकि लोग सोचते हैं कि कोई संबंध है, लेकिन वास्तव में ये तो गहराई में, तमोगुण की गहराई के नीचे नीचे है ये, इसमें कोई अध्यात्म का कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये सिद्धि की अलग अलग प्रकार की सिद्धियां होती है ना, तो तमोगुण में वो भी अपनी दृष्टि में सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, अष्टांग योग में वो भी अपने दृष्टि में सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, जो ज्ञान योग का पालन करते हैं वो उनके क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन सबसे ऊंची सिद्धि सम सिद्धि परमाम गति माम उपेत्य तो कौन थे या पुनर्जन्म न विद्यते दुखालय में शाश्वतम न अपनुवंती महात्मा है। तो सम सिद्धि परमाम गति मतलब क्या है? सबसे ऊंची सिद्धि है भगवान के धाम की प्राप्ति करना, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति की प्राप्ति करना, ये वास्तव में सिद्धि है। लेकिन सिद्धि शब्द अलग अलग जगह इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उन अलग अलग क्षेत्रों में वो सिद्धि प्राप्त कर चुके होंगे, लेकिन सारे क्षेत्रों में से सबसे ऊंची